awakening to a new way of living.
Namaste, good morning, and Om Shanti. Welcome to the second day of the IT conference of the Brahma Kumaris Rajyoga Education Research Foundation. Awakening is a central theme of this conference. We have all awoken to a new day. A new day marks a new beginning. And it is often said that light alone is not enough to awaken ourselves. We should rise to the occasion. And you all have. And I welcome you to the second morning session of the IT Wing Conference. This day too would be as fulfilling as day one had been. Our next speaker is Dr. Nirmala Didi. She's the director of the Brahma Kumaris Academy for a Better World, Gyan Sarovar, Mount Abu. She's also the chairperson of the Brahma Kumaris IT Wing. She's also the regional coordinator of the Brahma Kumaris centers across Australia and Asia Pacific region.
Om Shanti. IT video conference mein aap sabhi ka swagat hai. The title hai Awakening for the Call of Time. Awakening kyun kaha jata hai? Kya hum soye pade the? Agyan ko andhera निंद्रा कहा जाता है और ज्ञान को सोजरा दिन कहा जाता है. तो भल हम सभी को एकेडमिक नॉलेज बहुत है, हाँ आईटी के एक्सपर्ट होंगे, इंजीनियर होंगे, परंतु हमारी वीकनेस ये है हम अपने आप को नहीं जानते. भगवान जिसको हम दुख के समय याद करते हैं उनको नहीं जानते. और हमारा मन बहुत कंफ्यूज है, सारा दिन सोचता रहता है क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है आदि आदि. और इस कंपटीशन में हम हर एक के साथ कंपेयर करके अपने आप को बहुत स्ट्रेस में ला लेते हैं. तो इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आपको कैसे रिलैक्स होना है, अपने आप को जानना है, भगवान को जानना है, और इस समय हमको क्या करना है. क्योंकि हमेशा ने तो समय की पाबंदी रही. वी ऑलवेज यूज टू टेल आई हैव नो टाइम, सो बिजी सो बिजी. परंतु बिजी होते भी इजी कैसे रहे हम, और जो हमारा टाइम है उसका हम कैसे सदुपयोग करें और अपना जीवन कैसे खुशहाल बनाए. बिकॉज वी वॉन्ट टू बी हैप्पी हेल्दी वेल्दी एटसेट्रा. परंतु उसके लिए क्या करना है वो आप इस कॉन्फ्रेंस द्वारा जानेंगे और अपने आप को बहुत उन्नति को पाएंगे. क्योंकि मन की शांति सबको चाहिए, खुशी चाहिए, और परिवार के साथ प्यार चाहिए. तो जीवन में बैलेंस कैसे रखें, परिवार को भी देखें, नौकरी धंधे को भी देखें और अपनी आत्मिक उन्नति को भी देखें, वो कैसे हो सकता है, वो मैं समझती हूँ आप इस कॉन्फ्रेंस द्वारा जानेंगे और अपना समय सार्थक करेंगे. क्योंकि लकीली कोविड के कारण घर बैठे आप काम करते होंगे, तो इसलिए आपको अपना समय भी है और कुछ सुझाव भी मिलेगा. ओम शांति.
Thank you so much, Dr. Nirmala, for your good wishes. Are you getting overwhelmed by the negativity around you? So much of news, so much of fake news, so much of information overload, so to say. Sometimes things that we don't need to access to. Sometimes things that we don't need to listen to. Sometimes just an excess of something that we don't need. And often all of it is negative. How do you deal with it? How do you protect yourself? How do you protect your family? How do you protect children? Because what influences me influences them as well. Some of us are sensible enough to abstain from accessing these things. But some of us are just consumed by it. Some who are as young as children often have no option to just absorb everything that is around them. It is time that we learn how to protect ourselves, because the challenges around is also a challenge of protection. Our next speaker will speak about how to protect oneself. Can I guard myself? Can I be my own guardian angel? Is there an art that I can learn so that I can master to protect myself? Of course, there are ways and means, and that is what we would want to explore now. We have Brahma Kumar Suraj with us. Suraj Fai, as he is popularly called, has been living at the Brahma Kumaris headquarters for more than 50 years. As an accomplished yogi who has experimented with meditation all through his life. As a popular TV personality, his programs have garnered millions of views. His popular TV program, Samadhan, has ran over 1,000 episodes, often answering to the questions of our daily lives. His coherent wisdom and his innate simplicity will for sure guide you and inspire you.
Om Shanti. Topic hai self-protection through Swaman. Self-protection through self-respect. हम सभी संसार में रहते हुए कार्यों की व्यस्तता में अनेक समस्याओं और चैलेंजेस को फेस करते हुए अपनी बहुत सारी रियलिटी को भूल गए हैं. संसार ही भूलता जा रहा है. भौतिकता की भागदौड़, भौतिकता की ही एजुकेशन, भौतिकता पर ही सारी रिसर्च, मनुष्य का चिंतन, इस सब ने मनुष्य को ये भुला दिया है कि वो क्या है, उसके पास कितनी शक्तियां हैं, उसके अंदर कितनी शांति है. स्वमान हमें स्वयं से मिलाता है. स्वयं से बहुत दूर निकल गए हैं लोग. कितने बड़े लोग हों, स्वयं से बाहर निकल के, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में बाह्यमुखी कहते हैं, आनंद खुशी बाहर खोज रहे हैं. थोड़ी बहुत मिल तो जाती है, लेकिन इतनी नहीं मिलती कि वो सदाकाल चल सके. अब आप देखिए, आप सभी आईटी प्रोफेशनल्स बहुत ज्यादा व्यस्त भी रहते हैं. सारा दिन कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने बैठकर आपको मानसिक थकान भी होती है, बुरा इफेक्ट भी आता है रेडिएशन का, आपको थकान भी होती है. किसी किसी को लंबा समय कार्य करना पड़ता है, 12-12 घंटे. मानसिक थकान, शारीरिक थकान, पूरी जो डेली रूटीन है वो अस्त व्यस्त हो जाती है. लाइफ का जो एंजॉयमेंट है उससे दूर चले जाते हैं. लाइफ कुछ और भी तो है ना, केवल बहुत अच्छा पैसा कमा लेना, सॉफ्टवेयर बना देना, अपनी कंपनी के लिए काम कर लेना, ये तो ठीक है, ये एक पहलू है जीवन का. लेकिन स्पिरिचुअली सेल्फ एंजॉयमेंट, बाहरी चीजों से सेल्फ प्रोटेक्शन, जीवन को इजी बना देना, संबंधों को स्वीट बना देना, ये भी तो परम आवश्यक है। जिसके पास पैसा बहुत अच्छा हो, पद पोजीशन बहुत अच्छी हो, जॉब बहुत अच्छी हो, लेकिन घर में आए तो टेंशन मिले, व्यवहार में संबंधों में कटुता मिले, तो उसे सब कुछ बेकार लगता है। इन चीजों का मन पर बहुत बुरा इफेक्ट आता है। हम देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे लोग, शक्तिशाली लोग, जब कहीं दबाए जाते हैं, जब उनकी इमोशंस को ठेस पहुंचती है, जब उनके रिलेशनशिप्स में गड़बड़ होती है, ईगो आड़े आ जाता है, तब कई लोग सुसाइड करने तक की सोच लेते हैं, कई कर लेते हैं। हमें स्वयं को प्रोटेक्ट करना है बैड एनर्जी से। एक छोटी चीज मैं कहूं, आप जॉब में हैं, आपका बॉस आप पर क्रोध करता है, आप घर में जाते हैं कोई आप पर क्रोध करता है, आपकी शांति आपकी खुशी चली जाती है, इससे एफिशिएंसी भी डाउन होती है, कार्य शक्ति पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और मानसिक रूप से तो मनुष्य बहुत ही कमजोर होता जाता है। हमें अपने को इससे बचाना है। अब क्रोध करने वाले को तो हम नहीं समझा सकते कि तुम हम पे क्रोध न करो, वो उनकी नेचर हो सकती है, किसी विशेष जिम्मेदारी के तहत उनको क्रोध आ सकता है, हमसे कोई गलती हो गई, हम ठीक काम न कर रहे हो तो भी बॉस क्रोध कर सकता है। लेकिन हमें अपने को क्रोध से जो निगेटिव एनर्जी हमारी ओर आती है उससे बचाना है। और बहुत सारी चीजें निगेटिव हमारी ओर आ रही हैं आजकल। आप कार्य कर रहे हैं, एक प्रेशर महसूस हो रहा है, लंबा समय हो गया है आज ऑफिस में, घर आप पहुंचे हैं, थके थकाए पहुंचे हैं, थोड़े इरिटेट भी हैं, ये भी बैड एनर्जी का इफेक्ट है। लेकिन हम ऐसा सीख लें कि हम अपने कार्यों को एंजॉय करें, अपनी लाइफ को इजी बना लें, ड्यूटी माना डांस, आनंद ही आनंद, ऐसा भी तो किया जा सकता है। इसके लिए हमें अपने स्वमान को बढ़ाना है। प्रोटेक्ट हमें और भी बहुत चीजों से करना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका बहुत लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो उनमें विश्वास नहीं करते, कह देते हैं हम इन चीजों को नहीं मानते, मैं सोचा करता हूं ये मानते इसलिए नहीं है कि ये जानते नहीं हैं। अगर जान लें तो उस सत्य को स्वीकार करना उनके लिए सहज हो जाएगा। मैं आपका ध्यान दिलाऊं दो बातों की ओर। वर्तमान जो परिस्थितियां संसार में चली हैं, बहुत ज्यादा कोरोना का प्रभाव, उससे संसार में फैलता हुआ भय, ये भय भी तो बैड एनर्जी है ना। भय जहां उत्पन्न होता है वहां मनुष्य की मानसिक शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं, अनेक चीजें ब्रेन में डैमेज होती हैं, जिसका लोगों को पता नहीं चलता है। कोई मनुष्य चिंता करता है, भविष्य की चिंता होती है, भविष्य के कई तरह के भय होते हैं। हम सबको जानना चाहिए इससे ब्रेन की कई चीजें डैमेज होती हैं। अब इनसे हमें स्वयं को प्रोटेक्ट करना है। लोग तो आपको ये कह देंगे डरो नहीं, लोग तो आपको ये कह देंगे चिंता ना करो, लेकिन कैसे हो ये सब? और भी कई तरह की बैड एनर्जी हमारे चारों ओर है, क्योंकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन के साथ साथ मेंटल पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है, मनोविकार भी अपनी चरम सीमा पर हैं। वो वातावरण में हैं, वो भी बहुत बड़ा वायरस है, उसका भी इफेक्ट मनुष्य पर आ रहा है, और जिनमें उस उन तरह के संस्कार हैं वो उस बैड एनर्जी को उतना ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमें स्वयं को प्रोटेक्ट करना है। यदि हम स्वयं को बचा नहीं पाए, यदि हम स्वयं को सेफ नहीं कर पाए तो हमारी मनोस्थिति बिगड़ती जाएगी। अब चले हम स्वमान की ओर। स्वमान का अर्थ है, इंग्लिश में इसको सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं, हम स्वयं जो कुछ हैं उसको जानकर हमें स्वयं को रेस्पेक्ट देना। जैसे टाइम तो सबके पास है पर कोई अपने टाइम को वैल्यू देते हैं, ऐसे रेस्पेक्ट की बात भी है। धन तो बहुतों के पास है, कोई अपने धन को वैल्यू देते हैं, और इन सबसे बड़ी चीज कोई अपने लाइफ को वैल्यू देते हैं, कोई अपनी खुशी को वैल्यू देते हैं, कोई अपनी शांति को वैल्यू देते हैं। ये बहुत सुंदर चीजें हैं। कई लोग नहीं देते, इसलिए उनकी खुशी जल्दी जल्दी नष्ट हो जाती है। तो हमारा स्वमान क्या है, मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाऊंगा। हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको मालूम ना हो, आज आपको मालूम हो जाएंगी। हम आत्माएं हैं, ये शरीर नहीं, आत्मा और शरीर दोनों मिलकर ही ये जीवन बना है। ये हमारा ब्रेन है, लेकिन ब्रेन ही सब कुछ नहीं है, आत्मा में मन और बुद्धि है। आत्मा ऑपरेटर है, मन और बुद्धि के माध्यम से ब्रेन को ऑपरेट करती है। अभी कुछ वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की जो बड़ी सूक्ष्म है, मेडिकल की, आपने नहीं सुनी होगी। आत्मा का निवास ब्रेन में हाइपोथैलेमस के नीचे है। तो दो वैज्ञानिकों ने कार्य करते हुए ये पाया कि हाइपोथैलेमस के नीचे से वाइब्रेशंस जा रहे हैं ब्रेन को, भिन्न भिन्न जगह कमांड पहुंच रही है। उन्हें पता नहीं वहां आत्मा है, उन्होंने ऐसा देखा, नोट किया, और ये आत्मा का स्थान है। आत्मा ही कमांड देती है ब्रेन को और देह का संचालन करती है। हम आत्माओं में कुछ बहुत सारी क्वालिटी हैं, तो पहले आप ये जान लें और मान लें, यही सत्य है कि हम आत्माएं हैं। देखो हम कहते हैं ना, जैसे हम ये कहेंगे ये मेरा चश्मा है, तो चश्मा और मैं अलग हो गए ना। हम कहेंगे ये मेरी आंखें हैं, कौन बोल रहा है। ये मेरे कान हैं, कौन बोल रहा है। ये मेरा फेस है, कौन बोल रहा है। ये मैं कौन, आत्मा। तो आत्मा में गहराई से समाई हुई है शांति, उसमें समाया हुआ है बहुत ज्यादा प्रेम, बहुत गहन पवित्रता, प्योरिटी, बहुत शक्तियां, परम आनंद, परम सुख, ये सब आत्मा में समाहित हैं। हमें इन्हें जगाना है। कैसे जगाएंगे हम, लास्ट में थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, लेकिन आप राजयोग सीखकर इस मेडिटेशन को के द्वारा अपनी इन शक्तियों को जगा सकते हैं। शक्तियां हम सबके पास हैं, वो सोई रहती हैं। शक्तियों को जगा देंगे तो हमें पता चलेगा हम बहुत शक्तिशाली हैं। ये स्वमान हो गया हमारा। अपनी शांति को रियलाइज करेंगे, हमें रियलाइजेशन होगा, डीपली आई एम पीसफुल, ये हमारा स्वमान होगा। दूसरी चीज है, हम भगवान के बच्चे हैं। देखो हम उसे गॉड फादर, परम पिता, सुप्रीम फादर, इन शब्दों से बुलाते हैं। वो हमारा पिता है, हम आत्माएं उसकी संतान हैं। दो पिता हुए हमें, एक शरीर का और वो आत्माओं का। तो उसके संतान होने के नाते हम महान हैं। ये हमारा स्वमान है, ये ईगो नहीं है, कंफ्यूज ना हो आप। ये हमारा स्वमान है, मैं एक महान आत्मा हूं। वो सर्वशक्तिवान है, उसकी संतान होने के नाते हम बहुत शक्तिशाली हैं। वो सर्वशक्तिवान तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, बहुत शक्तिशाली। वो प्यार का सागर है, हम भी बहुत प्यार से भरपूर हैं, हमारे अंदर बहुत शक्तियां हैं। इस चीज की अवेयरनेस में रहना ये स्वमान कहलाता है। हम भगवान की संतान हैं, तो हम बहुत पुण्य आत्माएं हैं। अपने को ये गुड फीलिंग आप दो, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत पुण्य आत्मा हूं, मैं बहुत पवित्र हूं। जो परमपिता है वो पवित्रता का सागर है, हम उसके बच्चे आत्माएं भी बहुत पवित्र हैं। ये चार बातें मैं ले रहा हूं। और आत्मा की जो मूल क्वालिटी जिसकी हमने चर्चा की, वो सब मिलाकर अगर हम इन चीजों के लिए अवेयर होंगे तो सचमुच हम अपने को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। कोई व्यक्ति आपसे क्रोध कर रहा है, आपको ये निगेटिव एनर्जी आ रही है जो आपको इरिटेट कर सकती है, इससे बचना है, आप याद कर लें आई एम पीसफुल सोल। तो आपकी पीस के वाइब्रेशंस क्रोध करने वाले पे जाने लगेंगे, उसको फायदा हो जाएगा, आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे। आप बहुत अच्छा एक काम करें आज के संदर्भ में, आज कोरोना का युग, मैं इसे कोरोना युग कहता हूं, इससे हमें अपने को प्रोटेक्ट करना है। लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग या मास्क पहनना, ये सब जरूरी है, आप करें, लेकिन अपने चारों ओर आप एक शक्तिशाली ओरा बना लिया करें, आभा मंडल। कैसे? मेरे साथ साथ करें अभी। मैं आत्मा हूं यहाँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझसे, मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं चारों ओर, और मेरे चारों ओर एक पावरफुल ओरा बन गया है। बैठ जाएं इस पावरफुल आभा मंडल के बीच में। यू आर प्रोटेक्टेड। इस ओरा के अंदर कोई भी निगेटिव एनर्जी, कोई वायरस एंटर नहीं कर सकेगा। ये बहुत सुंदर स्वमान है हमारा। मैं आप सभी को एक सीक्रेट भी बता देना चाहता हूँ, जिससे आप अपने ब्रेन को बहुत एफिशिएंट रख सकते हैं, थकान से मुक्त रख सकते हैं, टेंशन से मुक्त रख सकते हैं, जो वो सारी चिंताएं और परेशानियां और कंफ्यूजन और निराशा जिसके कारण खुशी नहीं रहती, उससे भी आप अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और वो है, हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है, वी आर क्रिएटर। अब आपने ये सुंदर संकल्प किए स्वमान के, मैं महान आत्मा हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, महान आत्मा हूँ। अपने को समय दिया करें, जब आप जॉब में हैं तब भी एक एक मिनट आप कर सकते हैं, दो दो घंटे के बाद भी कर सकते हैं एक मिनट, तो आपको पता हो। आप सोच रहे हैं मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, तो प्योर एनर्जी यहाँ से आपके ब्रेन में फैल रही है, बहुत सुंदर होगा। जितनी बार आप सोचेंगे एक ही साथ बैठ के, आप 21 टाइम ये संकल्प कर लें, आपके ब्रेन को बहुत प्योर एनर्जी मिल जाएगी, बहुत सुंदर इफेक्ट होंगे। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर ऑलमाइटी हूँ, 7 बार कर लें, 21 बार कर लें, आपके ब्रेन को आत्मा से बहुत पावरफुल एनर्जी मिलेगी, आपका ब्रेन एफिशिएंट होगा। आपने संकल्प किया मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं परम पवित्र हूँ, प्योरिटी इज माई नेचर, आई एम प्योर, आई एम प्योर। प्योर. सो प्योर एनर्जी पैदा होने लगी आत्मा से, वो आपके ब्रेन में फैलने लगी. वो ब्रेन को रिपेयर करेगी. रिपेयर का अर्थ आप समझते होंगे कई तरह की निगेटिविटी से. मनुष्य के ब्रेन की कई शक्तियां डैमेज हो जाती हैं और मनुष्य को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्यों वो खुश नहीं है, क्यों उसे अच्छी नींद नहीं आ रही है. तो ये चीज उसको फिर से जिसे रीगेन करेगा ब्रेन हमारा और बहुत अच्छा हो जाएगा. तो ये हमारे स्वमान के संकल्प हैं. मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ. ये चीज आप नहीं जानते होंगे, अब जान लें. ये चीज संसार से मिस है, वो भागदौड़ में लग गया है, वो पैसे के पीछे भाग रहा है, वो संबंधों की प्यार की तलाश कर रहा है. उसके कहीं स्वीट संबंध हो, लवली रिलेशनशिप हो, वो नहीं हो रहे हैं. ये चीजें मिस हो गई हैं. मैं प्योर आत्मा हूँ, जो चारों ओर हमारा इम्प्योर वातावरण है, जो हर व्यक्ति को अफेक्ट कर रहा है, जो उसकी वासनाओं में वृद्धि कर रहा है, इससे आप स्वयं को प्रोटेक्ट कर सकेंगे. मैं पुण्य आत्मा हूँ, ये संकल्प आप बार बार करेंगे, पाप कर्मों से आप बच जाएंगे, क्योंकि पाप भी बैड एनर्जी है जिसका मनुष्य को अवेयरनेस नहीं है. ये पाप भी मनुष्य को बहुत नष्ट करते जा रहे हैं. हम पुण्य आत्माएं बन जाएंगे. मैं बहुत शांत हूँ, क्रोध पर विजय होने लगेगी. तो इन स्वमानों की आप प्रैक्टिस करें, इन्हें भी अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में स्थान दें, महत्व दें. इनसे आपको जीवन की यात्रा में आनंद आएगा, आप इजी हो सकेंगे. देखिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत लोग जल्दी टेंस हो जाते हैं. कामकाज का बोझ पड़ा नहीं और भारी हो गया मन, एक प्रेशर फील करने लगे. बॉस ने कुछ कहा नहीं और प्रेशराइज हो गए, वो भी कहेगा, काम भी ज्यादा होगा. ये सब तो आपके डिपार्टमेंट में है ही, लेकिन अगर ये स्वमान आप चालू करेंगे तो आपकी लाइफ इजी लाइफ हो जाएगी. और जब नेचर इजी हो जाती है, ध्यान से सुनेंगे ये सीक्रेट, नेचर इजी तो कामकाज इजी, नेचर इजी तो आपकी सारी समस्याएं भी इजीली समाप्त हो जाएंगी. नेचर इजी, कोई आपको बीमारी होगी वो भी इजीली जाएगी. आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, आपको अनुभव होगा हम बहुत खुश हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, हम बहुत पॉजिटिव हैं, तो अनेक बीमारियों से तो हम बचे हुए हैं. तो इजी लाइफ हो जाएगी और तब आप अनुभव करेंगे. सवेरे से काम करते हुए जब आप रात को अपने घर वापस जाएंगे, इवनिंग में जाएंगे, तो आप बहुत लाइट होंगे. ऐसा नहीं लगेगा आपकी सारी शक्तियां आप यूज करके घर पहुंच रहे हैं, बहुत थके थके, बहुत इरिटेट होकर, आज का सारे दिन का बोझ सिर पर रख कर आप घर जा रहे हैं. नो, आप इजी हो जाएंगे. आपको लगेगा आज का दिन हमने एंजॉय किया, अपनी जिम्मेदारियों को सिंसियरली पूर्ण किया, सबको प्रसन्न किया, आज का हमारा दिन बहुत सुंदर बीता. तो दिन की शुरुआत भी बहुत सुंदर होगी, दिन का एंड भी बहुत सुंदर होगा. मैं आप सभी को ये एक संकल्प दे रहा हूँ, ब्रिंग ए चेंज इनटू योर मेंटेलिटी. सवेरे उठो, ये सब याद करके मुस्कुराओ. Oh, life is so beautiful. My life is most beautiful. I enjoy my life. सुंदर विचार करो. सवेरे के आपके पहले 3 मिनट के विचार आपके जीवन में नई एनर्जी आपको देंगे. सुंदर विचार. निगेटिव विचार किए तो निगेटिव एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है. और रात को सो तो भी मुस्कुराते हुए सो. तो उठेंगे मुस्कान के साथ, सोएंगे मुस्कान के साथ, तो आपका भाग्य भी मुस्काने लगेगा, लाइफ मुस्काने लगेगा, और आपकी मुस्कान को देखकर दूसरे भी मुस्कुराएंगे, हैप्पी हो जाएंगे. लास्ट बात आपको कह रहा हूँ, रेडिएशन का या और चीजों का जो बैड इफेक्ट आपके ऊपर आता है, आप जब भी पानी पियो उसे चार्ज कर दो। ये वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी रिसर्च की है। पानी पर नजर डालो, 7 बार संकल्प कर दो, आई एम पावरफुल सोल, आई एम मास्टर ऑलमाइटी, आई एम वेरी पावरफुल। सो आपके नैनो से पावरफुल वाइब्रेशंस पानी में समा जाएंगे, वो आपके अंदर जाएंगे। तो 4 बार ऐसा पानी पी लेना, दे विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बैड एनर्जी। तो इस तरह स्वमान के अभ्यास से, थोड़ा आत्मचिंतन से आप अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपके चारों ओर वाइब्रेशंस भी इतने अच्छे फैलेंगे कि दूसरे लोग भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो मेरी शुभ भावना है आप सभी लाइफ को एंजॉय करें, लाइफ को सरल बनाएं, भगवान से अपने परमपिता से भी जुड़ जाएं, तो जीवन की यात्रा आनंद से भरपूर हो जाएगी। ओम शांति। आइए अब हम सभी 5 मिनट यही मेडिटेशन कर लेते हैं। आप खोल कर ही बैठेंगे, बहुत शांत हो जाएं, सीधे बैठें, मन को स्थिर कर लें और विजुअलाइज करें दोनों भ्रकुटियों के मध्य में अंदर मैं चमकती हुई आत्मा, पॉइंट ऑफ एनर्जी। मुझसे चारों ओर एनर्जी फैल रही है, रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। मैं बहुत पीसफुल हूँ। एक्सेप्ट करते चलेंगे, आई एम वेरी पीसफुल। मैं बहुत सुखी हूँ। आई एंजॉय माई लाइफ, आई एंजॉय माई वर्क। मैं बहुत पवित्र हूँ। मुझसे प्योरिटी की गोल्डन रेज मेरे ब्रेन में फैल रही है। बाहर फैल रही है, पूरे घर में फैल रही है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। आई एम मोस्ट पावरफुल पर्सन, आई एम वेरी पावरफुल। मुझसे शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मेरे चारों ओर एक पावरफुल ऑरा बन गया है। मैं भगवान की संतान हूँ। इसलिए मैं महान हूँ। मेरे विचार महान, मेरे कर्म महान हैं। मैं भगवान की संतान बहुत पुण्य आत्मा हूँ। मुझे पुण्य कर्म करके पुण्यों का भंडार जमा करना है। मैं प्यार के सागर की संतान प्यार से भरपूर हूँ। मुझे सभी को निर्मल प्रेम बांटना है। मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आत्मा हूँ, इस देह की ब्रेन की मालिक हूँ। मैं पीसफुल हूँ, पीसफुल, पीसफुल। ओम शांति।
प्रोटेक्टिंग योर ओन सेल्फ, guarding your own self, it's not so difficult. When we can protect others, we should protect ourselves as well. That ability lies within. And Suraj Bhai very beautifully explained the power of Svaman, of respecting one's real self. A positive affirmation to the true nature of soul, who we really are, what is our positive side. And constantly reminding ourselves of this positivity strengthens us, protects us. And I believe we would all agree that these are the needs, these are the tools that will help us face these challenges. Thank you so much, Suraj Bhai, for sharing that wisdom with us.
Hello, namaste. I'm Anu Sethi, mother of two beautiful children. I head the human resources in FEV and lead the Industrial Association at Talegaon, which is situated in Pune. I'm here to share my journey and about the self-reflection room that I set up in my previous organization. So, for more than a decade, I have been in the space of self-inquiry to who am I? And three elements surfaced: silence, freedom, and love. I have been experiencing the silence of my heart and my soul, freedom from the concept of self, God, relationships, and so on and so forth. And slowly I have dropped most of them. And third is love, has been the toughest one. Loving myself and loving the people the way they are. And what is that which is within us, which connects us and make us feel that there is this oneness on this planet. Slowly and steadily living a life of being compassionate and being empathetic has become a way of life. So you heard of the story of my past organization where I set up the self-reflection room. So where there are people, there are emotions. And when there are emotions, most of the time, there are conflicts. And these conflicts also affect the efficiency and productivity. So I wanted to give a tool to my employees where they find the answers within themselves, but not really look for those solutions outside of themselves. And that's where the self-reflection room surfaced as an idea to me. The first step, of course, was to get my HR director, who was a German gentleman, enrolled in this concept, my colleagues and the leadership team. And I was successful. Second was to identify the room. So we had a room which we were using to interview the contract employees. So we used the room. We had to change the environment of the room. So we put the yellow lights, had the walls in white color, carpeted, had the mattresses, some pillows kept there, and then instructions to keep the footwear outside. A register was kept to have the monitoring of who is using, how much time they are using. And we also, I also got this concept of fortune cookies, yeah, and kept those self-inquiry questions in a small bowl there. We inaugurated the room. There were mixed responses. It was a German organization, and people from different countries were a part of this company. And some responses were good, and some ridiculed it. So what I did next was I had this flyer we sent out saying that, are you standing in the balcony or are you on the dance floor? It was a cartoon which we sent. And the cartoon showed that there were some people dancing on the dance floor and a couple on the in the balcony. Well, the objective of this thesis was to say that when we are in the balcony and look at things in a from the helicopter view, then we don't really blame anybody, but it is more situational. So this was the objective of this flyer. And I received very good feedback. And then the flow of employees using the self-reflection room increased. During that time, I met Bala. And in that conversation, what surfaced was, if I could put Shiv Baba's, the picture with the dot in the room, in the center of the room, was a good idea. So I did that. And post that, I received good responses. When the people were using the room and looked at the picture, and they felt relaxed, they felt at peace, and they felt calmer. So this is what happened, and I felt that in organizations, if we could give a space to people to take a pause, to sit back and look at situation the way it is, like as is, and probably they would be able to find those answers for themselves with certain driving questions. Like this COVID-19 situation is actually, we are going through a pause, and we self-reflect. What is where we are, and what are we doing in every way? And then my understanding is what really helps us, what are the enablers? Are to be resilient, to be agile, to be adaptable, is to look at, am I doing that? And eventually being compassionate with self and with others. So this, I hope you enjoyed listening to this, and yeah, thank you.
ओम शांति। ये बहुत खास गाना है जो कि मैंने खास आज आपके लिए चुना है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। बाबा ने भी यही ज्ञान हमें सबको बताया है कि हमें अच्छे कर्म करना है ताकि ये जो हमारा जन्म है ये सफल हो जाए और हम सभी एक अच्छी दुनिया में जाएं। तो ये गाना आपके लिए।
जगमग उसकी ज्योति है। जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।
ओम शांति। Hello everybody, my name is Hardik Parekh. I represent a company called Sears Technologies. Sears is in the business of helping create a better tomorrow by leveraging new age technologies like cloud, AI and ML. One of the core strengths that Sears has is in enabling and empowering super awesome people who can learn very fast, and they can leverage some of these new age technologies to solve really complex business problems that can help transform businesses. Investing in these super awesome people to become even better at both work and home is hence very critical for us. Over the last several years, we have invested in many self-transformation programs, meditation, inner engineering, retreats that helps people become more efficient, better at both life and work. As a part of these initiatives, we came in touch with Brahma Kumaris close to around 7 years ago, when I and my wife, Ami, were invited to a very beautiful meditation retreat in Mount Abu, conducted at Gyan Sarovar. It was a very pleasurable experience for both of us, and we decided to invite close to around 40 members from our leadership team in the subsequent one. Since then, it's been a continuously increasing number of people participating and taking benefit from these programs at Gyan Sarovar year on year. And we have kind of learned a lot. We have been inspired by the way in which the event is conducted, the learnings that are imparted as a part of these programs, and definitely have become better people at managing different kinds of situations at both life as well as work. I encourage all of you to take benefits out of these innovative programs being conducted by this organization, and I hope that you can also take similar benefits. Since then, we have initiated quite a few programs within Sears to drive self-transformation, to enable better ways of thinking, and invested in very senior executive roles that would focus exclusively on self-transformation. And those initiatives have really delivered fantastic results for us, both tangible as well as intangible. And I encourage other organizations to also take benefit of this, especially during current times when things are changing very fast. There are a lot of uncertainties. There is a different way of working. It definitely requires us to also enable a different way of thinking. And I'm sure the programs that Brahma Kumaris conducts in the area of enabling a new way of thinking will be beneficial to you all too. Thank you, and Om Shanti.
What do you do when you feel low? What do you do when you feel that you cannot tap into your inner resource? What do you feel when there is turbulence inside? Is there an external source? Is there a source of power? Is there a powerhouse for which I can seek out and connect to? Interestingly, we all have sought out help when we have found ourselves helpless. But again, we can only connect to those whom we know. And if we do not know this source, if we do not know where this powerhouse is, can we connect? This is the next question that we will ponder upon. This is also an interesting aspect of meditation. When we reach out to the unlimited, when we go to the ocean, where we can fill in as much as we want, because the source is always giving, and all we need to know is to reach out to the source. The next lesson of meditation is connecting and knowing the divine. It is knowing who the Supreme is. To give us introduction to the Supreme Soul, to the divine, to the source, we have the next speaker with us, Brahma Kumari Sudesh Didi. I take pleasure to introduce BK Sudesh amongst you, a personality who has practiced Raj Yoga meditation for more than 60 years of her life. The wisdom that has transcended the limits of age. A personality that has imbibed spirituality with great simplicity that reflects in her speech, in her actions. She is the European director of the Brahma Kumaris and specifically lives in Germany and looks after the Brahma Kumari centers across Germany. She is a widely traveled speaker. She is known for her deep insights, for her charming smile and simplicity that would just blow you off. Let us listen to Sudesh Didi, Introduction to the Supreme.
Om Shanti. Good morning. Good day. Good evening. क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस चल रही है लगातार. इस कॉन्फ्रेंस में मेन कनेक्शन, मेन बात है कि ऐसी परिस्थिति में भी जब हम सब आपस में डायरेक्ट नहीं मिल सकते तो भी ऐसा ही अनुभव हो कि हम सन्मुख मिल रहे हैं, संगठन में मिल रहे हैं, आपस में संपर्क नेचुरल रीति से कर रहे हैं. तो जो भी टेक्नोलॉजी में काम करने वाले भाई बहन हैं, विशेषज्ञ अथवा एक्सपर्ट हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस और शुभ भावनाएं. परंतु जिस प्रकार से हमारा कम्युनिकेशन आपस में एक दो के साथ कंफर्टेबल, पहचान के साथ, संबंध सहित होता है और वास्तव में दिल खुल के कम्युनिकेशन करना, हर प्रकार की कोई भी बात है तो उसका प्रॉब्लम को हल कर लेना, अथवा किसी भी प्रकार का कोई सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए, तो उसका सारा आधार होता है संबंध, स्नेह, मित्रता भाव. तो ऐसे ही हम जैसे आपस में एक दो का ये नेटवर्क हमने तैयार किया हुआ है, हम कम्युनिकेट ठीक कर सके. अब ये भी सोचे कि हम जो एक जीवन के जाल में फंस चुके, जंजाल में फंस गए हैं, उस नेट से फ्री कैसे होवें, और ये नेटवर्क कैसे, स्पिरिचुअल नेटवर्क जान जाए अथवा कनेक्शन जान जाए, उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है इनर टेक्नोलॉजी की के वंडर को जानना. और इनर टेक्नोलॉजी है अपने आप से संबंध और परमपिता परमात्मा के साथ संबंध. टेक्नोलॉजी अथवा साइंस का आधार भी, विज्ञान का आधार साइलेंस और ज्ञान है. और एक्सपेरिमेंट, रिसर्च, एक्सपीरियंस है. एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस करने के बाद फिर जो दूसरों को दिया जाता है उसमें कॉन्फिडेंस होता है और एक भावना शुभ भरी होती है कि सबको लाभ मिले. तो मैं आज फिर जो सर्व का कल्याणकारी परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, सर्व प्रकार की समस्याओं का समाधान करने वाले हैं, आत्माओं को राइट पाथ दे करके राइचियस बुद्धि देते हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन अपने आप से इनर टेक्नोलॉजी द्वारा अपने आप से हमारा संबंध कैसे जुटे और परमपिता परमात्मा के साथ कैसे जुटे. तो परमात्मा का परिचय, ज्ञान के सागर का परिचय अथवा पहचान शॉर्ट में देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी भारत की सभ्यता, संस्कृति, एक स्वाभाविक रीति से हम परमात्मा को याद करते हैं. कोई भी परिस्थिति आती है, प्रॉब्लम आती है, परमात्मा का ध्यान करते हैं. परंतु परमात्मा कौन? परम आत्मा शब्द ही सिद्ध करता है कि सर्व आत्माओं में परम, सुप्रीम सोल. तो जैसे आत्मा एटम अति सूक्ष्म एनर्जी है, लाइट है, लाइफ है, एनर्जी है शरीर में, तो बुद्धि भी ठीक काम कर रही है, ब्रेन भी ठीक काम कर रहा है, हार्ट भी ठीक काम कर रहा है, ऑर्गन्स भी ठीक काम कर रहे हैं. ये ऑटोमेटिकली इनर टेक्नोलॉजी बॉडी की सिस्टम ठीक कर रखती है, इंसान हेल्दी रहता है, कम्युनिकेशन दूसरों के साथ समझ से चलता है, अपने जीवन को एक सभ्यता में, संस्कृति के पटरी पर चलाते हुए डेस्टिनेशन पर पर्सनैलिटी को इम्प्रेसिव डिवाइन बना लेता है इंसान, वो तब है जब अपने आप से कनेक्शन ठीक है। जब मैं कहती हूँ अपने आप से, इस मीन्स कि अपने आप को रियलाइज करना, हु एम आई, व्हाट एम आई। शरीर को तो हम सभी जानते हैं, परंतु शरीर के द्वारा रिसर्च करने वाली, एक्सपेरिमेंट करने वाली, एक्सपीरियंस करने वाली, वो क्या एनर्जी है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, टेक्नोलॉजी का भी पर्पस क्या है, जो सीखा हुआ है, सुख मिला हुआ है, बेनिफिट लाइफ में खुद एक्सप्लोर किए हैं, वो दूसरे के साथ शेयर करना। तो पर्पस लाइफ का ये है कि जो मुझ आत्मा के अंदर इनर पोटेंशियल है, रियल एनर्जी है, मेटाफिजिकल पावर है, उस मेटाफिजिकल पावर को मैं एक्सपीरियंस भी करूं और एक्सप्रेस भी करूं, शेयर भी करूं, और उसके आधार से अपनी केयर भी करूं, दूसरे की भी केयर करूं, कर्म मेरे ऐसे हो, रिजल्ट जीवन का ऐसे हो जो हम दूसरी आत्माओं को इंस्पायर कर सके, एम्पावर कर सके उनकी पॉजिटिव एनर्जी को। तो जब भी परमात्मा से को याद करते हैं तो कुछ कल्याण की भावना से, कुछ प्राप्ति से उनको याद करते हैं। परंतु वो परमात्मा कौन, वन गॉड इज वन, वन कौन, वन इज वन ही होगा ना। और जब सुप्रीम कहते हैं तो सुप्रीम तो एक ही होगा, तो सुप्रीम सोल। तो जब मैं अपने को, जब आप अपने आप को आत्मा समझेंगे, रियलाइज करेंगे, बिलीव करेंगे कि यस मैं एक प्योर एनर्जी हूं, मैं आत्मा हूं, तो पहले अपने आप से अपने आत्मा की जो एनर्जी है, पीस, प्योरिटी, लव, ट्रुथ, हैप्पीनेस, विजडम, बेनेवोलेंस, इस एनर्जी से कनेक्ट होते ही जैसे कि आत्मा एक्सपीरियंस करने लगती है, एक्सप्लोर करती है उसकी डेप्थ को, और उस वाइब्रेशन से उसका कनेक्शन, फिर इसकी डिजायर होती है कि मैं उसको डेवलप करूं, एक्सपेंड करूं, शेयर करूं। परंतु वो पावर श्रेष्ठ कर्म इच्छा होती है परंतु कर्म नहीं कर सकते, श्रेष्ठ कर्म की भावना होती है परंतु कहते हैं मैं चाहता तो हूं अच्छे कर्म करूं, परंतु ना चाहते भी रॉन्ग हो जाता है, बुरा नहीं चाहता हूं तो भी अपने आप हो जाता है, अच्छा करना चाहता हूं तो टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो अब वो अच्छा हमारे जीवन में रहे, गुड हमेशा रहे, डेवलप रहे, एनर्जी डेवलप होती रहे, इसीलिए गॉड को जानना बहुत जरूरी है, सुप्रीम सोल को जानना भी बहुत जरूरी है। तो मुझे आत्मा का, जब अपने आप को आप ये समझ के बैठेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग एक शुद्ध आत्मा हूं, और मुझे आत्मा का पिता, परम पिता परम आत्मा है। तो सुप्रीम सोल फिजिकल एनर्जी नहीं है, सुप्रीम बीइंग है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन बॉडी में बीइंग अथवा लिविंग एनर्जी है, तो हम आत्माओं का पिता आत्मा जैसा ही होगा ना। चिड़िया के बच्चे को देख के आप ये नहीं कहेंगे वो हाथी का बच्चा है, हाथी के बच्चे को देख के ये नहीं कहेंगे वो मछली का बच्चा है, मछली के बच्चे को देख के ये नहीं कहेंगे वो शेर का बच्चा है। ह्यूमन के पेरेंट्स ह्यूमन जैसे है, पक्षियों के माँ बाप पक्षियों जैसे है। तो आत्माओं का पिता परम पिता परम आत्मा, सुप्रीम सोल, जिनके यादगार ज्योतिर्लिंगम, supreme soul, supreme light. God is light. अब light का आप अगर एक चित्र बनाएंगे तो oval shape बन जाएगा, तो आप देखेंगे bodyless form, जो image है मंदिरों में, वो शिवलिंग की है, ज्योतिर्लिंगम. सो मेल या फीमेल का फॉर्म नहीं है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जेंडर, जेंडर बॉडी का है, सोल का जेंडर नहीं है. सोल इज जस्ट सोल. सो सुप्रीम सोल बियॉन्ड जेंडर, बियॉन्ड बॉडी. सो बॉडीलेस बीइंग, इनर बीइंग बॉडीलेस है, बॉडी लेकर के कर्म कर रही है, पर सुप्रीम सोल हमारी तरह जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं. सुप्रीम बीइंग, सुप्रीम लाइट, बेनेवोलेंट बीइंग, इसलिए उनका नाम शिव है. शिव शंभु, स्वयंभू, उनको कोई क्रिएट करने वाला नहीं है. हमारे पेरेंट्स हैं, पर सुप्रीम सोल का कोई पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि सुप्रीम सोल को बॉडी नहीं है, तो बॉडीलेस बीइंग है. परंतु वो बॉडीलेस बीइंग जो शिवलिंग जिनकी मूर्ति मंदिर में रखते हैं, उस पर आप देखेंगे कि तीन लकीर लगी हुई होती हैं. तो वो तीन लकीर जो है, या जो शिव के पुजारी अपने मस्तक पर तीन लकीर लगाते हैं, तो वो गॉड की थ्री एक्ट्स का यादगार है. मंदिर में शिवलिंग के ऊपर तीन बिलपत्री चढ़ाते हैं, अथवा भगत तीन त्रिमूर्ति का चित्र रखते हैं, तीन लकीर लगाते हैं, तो वो गॉड की थ्री एक्ट्स का सिंबल है. जी ओ डी, गॉड. जी फॉर जेनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, एंड डी फॉर डिस्ट्रॉयर ऑफ डार्कनेस, डायरेक्टर ऑफ क्रिएशन, क्रिएटिविटी ऑफ न्यूनेस. तो उनकी फिर प्रैक्टिकल में वो जैसे कोई एक्शन के लिए जरूर कोई फॉर्म चाहिए, तो ये जो तीन चित्र हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो परमात्मा के कर्तव्य की, जैसे कि ये कहेंगे कि एक्टिविटी का यादगार है, क्योंकि ह्यूमन मनुष्य मनुष्य आत्माओं को एक्टिव बनाना है, मनुष्य आत्माओं को सुखी बनाना है, मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देना है. परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान किन को देगा? अज्ञानियों को ज्ञान देगा. पतित पावन है तो पतितों को पावन बनाएगा. मुक्तेश्वर है तो मुक्त करेगा, तो किससे मुक्त करेगा? दुख से मुक्त करेगा, तो किन को मुक्त करेगा? मनुष्य आत्माओं को, अथवा प्रकृति में जो दुखी आत्माएं हो चुकी हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे मानव हैं. तो परमात्मा को ये ज्ञान देने के लिए, साधारण सा स्वरूप मनुष्य आत्मा को समझाने के लिए उनका एक्ट होता है ज्ञानेश्वर, ज्ञान का सागर. गॉड इज लाइट, ज्ञान सूर्य प्रगटया, अज्ञान अंधेर विनाश. तो सुप्रीम सोल नॉलेज देते हैं, एजुकेशन देते हैं. जब एजुकेशन है तो ब्लाइंड फेथ नहीं है. ब्लाइंड एजुकेशन मीन्स एक्सप्लोर करना, अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करना, और फिर उसके लिए रिसर्च करना. तो ये जो शंकर जी की मूर्ति है, वो है फिर से एक्सप्लोर और रिसर्च करो इन मेडिटेशन, इन साइलेंस. तो विजडम, ट्रुथ, नॉलेज को जो है उसको एक्सपेरिमेंट करके उसका रिजल्ट निकालना, तो ये साइंस साइलेंस है. तो परमात्मा नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं, साथ साथ विज्ञान देते हैं, और विज्ञान है साइलेंस. साइलेंस से एक्सप्लोर करते हैं विशेष ज्ञान, और जो विशेष रियलाइजेशन कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, वो फिर कंबाइंड फॉर्म में एक्शन में आनी चाहिए, सस्टेनेंस होनी चाहिए. तो जब अज्ञान खत्म होता है, ज्ञान मिलता है, अज्ञान खत्म होता है, तो एक्शन में गुड एक्शन होने चाहिए. तो जो विष्णु जी हैं, वो कंबाइंड फॉर्म है एनर्जी का, नॉलेज और ज्ञान को एक्शन में लाना, मीन सस्टेनेंस, ऑपरेट करना. तो परमात्मा शिव तीन देवताओं की रचना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा सुख की दुनिया की क्रिएटिविटी, सुख की दुनिया की स्थापना ज्ञान से, शंकर द्वारा योग तपस्या द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, और फिर वो कंबाइन एनर्जी एक्शन में लानी है। तो एक्शन रिसर्च करते करते नॉलेज और योग से पावर आ जाती है, प्रैक्टिस से परफेक्शन की। तो ये कंबाइन एनर्जी है, मेल और फीमेल, जिंग और जंग, राइट लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, हार्मनी लाने के लिए। तो खाली सोचना नहीं, परंतु सोचने के साथ कर्म होना चाहिए। तो उसमें ये रियलाइजेशन परमात्मा, फिर स्वदर्शन चक्र, चारों हाथों में चार अलंकार है, ये मेल और फीमेल की एनर्जी कंबाइंड कैसे काम करे, हार्मनी में कैसे काम करे, उसके लिए क्या चाहिए, ये स्पिरिचुअलिटी के साथ रियलाइजेशन चाहिए। उस रियलाइजेशन से कमजोरी खत्म होती है और सोल में पावर आती है। और फिर टेक्नोलॉजी क्या काम करती है कि हम संसार में रहते हुए, व्यवहार में रहते हुए कर्म कैसे करते हैं, परमात्मा सिखाते हैं कि लोटस लाइफ, प्योर लाइफ, डिवाइन लाइफ, लाइटनेस लाइफ में रहे, और फिर जो भी बोल रहे हैं वो ट्रुथ नॉलेज हो। तो सुप्रीम सोल का फंक्शन क्या है, ट्रुथ को रिवील करना, और ऐसा ट्रुथ जिसमें बेनेवोलेंस समाया हुआ हो। तो परमात्मा का परम आत्मा सुप्रीम सोल है, सुप्रीम एनर्जी है, सुप्रीम पावर है। उनका कर्तव्य नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का को ट्रांसफॉर्म करना, और उसको नई को सस्टेन करके इस दुनिया को फिर से सुखधाम बनाना। उनके गुण क्या हैं? क्योंकि लिविंग एनर्जी है, विजडम, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ की नॉलेज, गॉड इज लाइट, लाइट इज माइट, नॉलेज इज लाइट इन दैट। तो वो ज्ञान के सागर है, शांति के सागर है, प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है, सच्चिदानंद। तो परमात्मा का के गुण, जब हम आत्माएं अपने आप को परमात्मा के साथ संबंधित करते हैं, उस संबंध से परमात्म शक्ति हमारे पास आती है। और फिर क्या होता है कि नेचुरली राइट, राइट कॉन्शियस, गॉड इज ट्रुथ, तो ट्रुथ और राइचसनेस वो बड़ा क्लियर, क्लैरिटी के साथ। ट्रुथ है तो क्लैरिटी है, ट्रुथ है तो फियरलेसनेस है, ट्रुथ है तो करेज है सोल में। तो परमात्मा फिर हम बच्चों के अंदर, यानी हमको वो स्पिरिचुअल साइंस सिखा देते हैं, जिससे हम अपने कमियों को खत्म करके पुरानी दुनिया को नवी दुनिया बनाते हैं। तो परमात्मा का काम है पतित पावन, परमात्मा का काम है दुखहरता सुखहरता, परमात्मा का काम है आत्माओं को एनर्जी दे करके पवित्र बनाना। तो जितने भी परमात्मा शिव के मंदिर हैं, अमरनाथ, सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नाथ नाथ शब्द जहां पर है, लिंग लिंग शब्द जहां पर है, एक लिंग शिवलिंग, अथवा ईश्वर ईश्वर शब्द, पापकटेश्वर, मुक्तेश्वर, विश्वेश्वर, वह ज्योतिर्लिंगम है। तो अब वो सर्वधर्म आत्माओं का पिता, शरीरधारी कोई नहीं है, वो ऐसा परमपिता परमात्मा के साथ जब हम आत्माओं का संबंध जुड़ता है, तो मनुष्य आत्माएं उस संबंध से, योग से अपने जीवन को फिर मनुष्य से देवता जैसा बनाते हैं, अथवा सुख दाता बना लेते हैं। देवता मीन्स देने वाला। तो जैसे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन देती है, कल्याण करती है, अथवा सुख के साधन देती है, तो परमात्मा की नॉलेज और परमात्मा के साथ जब आत्मा का संबंध जुड़ जाता है, तो फिर आत्मा को प्रॉपर्टी मिलती है कौन सी, रिजल्ट में सुख भी है परंतु संगम ऐसे कॉन्फ्लुएंस एज पर, जबकि आयरन एज का एंड और गोल्डन एज की बिगिनिंग, पुराने का एंड और नई की आदि, तो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से, पिता है ना हमारा परमात्मा, वो परम शिक्षक भी है और लिबरेटर भी है, सतगुरु भी है, तो उनसे आत्मा को तीन प्रॉपर्टी स्वाभाविक रीति से मिलती हैं और वो है प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो जब वो इनर प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी सोल में है, तो वो टेक्नोलॉजी इस बॉडी को भी एकदम बड़े सिस्टम से चलाती है, बॉडी भी हेल्दी हो जाती है, एनवायरनमेंट भी शुद्ध बन जाता है। तो इसलिए नई दुनिया की स्थापना के लिए फाउंडेशन है नॉलेज प्योरिटी और इनर विजडम प्रॉस्पेरिटी। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो परमात्मा की प्रॉपर्टी उनकी नॉलेज, उनके वर्च्यूज और उनकी पावर। ये सोल को जैसे हेरिडिटरी क्वालिटीज और इनहेरिटेंस मिल जाता है, तो परमात्मा हमारा पिता है, जब हम उनके साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं और समझ से जोड़ते हैं, डर से नहीं प्रेम से जोड़ते हैं, तो आत्मा में वो सर्व शक्तियों की प्राप्ति की होती है। तो परमात्मा का परिचय में, इंट्रोडक्शन में, उनका नाम शिव है, रूप ज्योतिर्बिंदु है, लाइट है, दैट्स व्हाई गॉड इज लाइट। बुद्धिस्ट भी लाइट को सामने रख करके कंसंट्रेट करते हैं। गुरु नानक जी ने कहा एक ओंकार, सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा लाइट, तो उनका ज्योतिर्लिंगम रूप है, गुण उनके गुणों का भंडार है, पर ज्ञान के सागर है, शांति के सागर है, प्रेम के सागर है, सर्वशक्तिवान है, पतित पावन है, ज्ञान देते हैं मनुष्य आत्माओं को कि तुमको कर्म कैसा करना है, मिलने का समय परमात्मा का। तो नाम शिव, रूप ज्योति स्वरूप, गुण ज्ञान शांति प्रेम पवित्रता आनंद, कर्तव्य सृष्टि का परिवर्तन, पुरानी सृष्टि का परिवर्तन, नई सृष्टि की स्थापना, संबंध उनके साथ, वो हमारा परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है, और उनसे प्राप्ति परमात्म क्वालिटीज की, और उससे जो आत्मा को शक्ति मिलती है, वो फिर हम सब ये टेक्नोलॉजी जो अभी हम यूज कर रहे हैं, वो इतनी डिवाइन और कंस्ट्रक्टिव हो जाती है, जो सतयुग में ऐसी यादगार है। पुष्पक विमान थे, रातों रात महल तैयार हो जाते थे, कम्युनिकेशन ऐसी होती थी जो संकल्प से एक दो के संकल्प को जान सकते थे, पक्षियों की भाषा को भी पढ़ सकते थे, नेचर के एनवायरमेंट में भी परफेक्शन रहती थी। तो यही फिर साइंस स्पिरिचुअलिटी के बल से अपनी रियलिटी अपने ट्रुथ पर आ जाती है। तो इसीलिए परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से तीन पावर्स इकट्ठी काम करती हैं हार्मनी में, मैटर माइंड सोल एंड गॉड। जब ये तीनों टेक्नोलॉजीज, मैटर की टेक्नोलॉजी साइंस की टेक्नोलॉजी है, साइंटिस्ट एक्सप्लोर करते हैं मैटर की एनर्जी को, भगवान फिर कंट्रोल एक्सप्लोर कराते हैं अपनी इनर एनर्जी को, और हम फिर जब उस एनर्जी से परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं, तो परमात्मा फिर रिफाइन करते हैं इस एक्सटर्नल एनर्जी को भी और इंटरनल एनर्जी को। तो फिर यही सृष्टि इस टेक्नोलॉजी से, साइंस से पवित्र सुखधाम स्वर्ग बन जाता है। इसलिए हेवनली गॉड फादर, फादर क्या बनाते हैं इस सृष्टि पर, हेवन बनाते हैं, स्वर्ग की सौगात हमारे लिए ले आते हैं, और उस सौगात को, यानी जिसमें तन हेल्दी, मन शांत, संबंध में हार्मनी, प्रकृति एकदम परफेक्ट सुखदायी आनंद देने वाली, पर उसके लिए क्या चाहिए? योग चाहिए, इनर संबंध परमात्मा के साथ चाहिए। तो ऐ समय की सीमा को देखते हुए मैं अभी यहाँ समाप्त करूंगी और 3-5 मिनट के लिए उस मेडिटेशन में बैठें, फिर से रिवाइज करें जो हमने अभी सुना है, मैं कौन, रिलैक्स, अपने आप को शरीर से अलग, अवेयरनेस, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ लिविंग एनर्जी, जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट सीटेड हियर इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। I am a pure and peaceful soul. Om, I am a living energy, metaphysical being of light. Main shuddh atma, शांत स्वरूप हूं, शांति मेरा स्वधर्म है, I am pure mind, sankalp shakti, sankalp kijiye, jaisa sankalp वैसी फीलिंग इमर्ज होती है, फील कीजिए। आई एम अ थिंकिंग बीइंग, As I think, so shall I become. I think of peace. And feel it. As I breathe in, I breathe in peace. As I breathe out, I vibrate peace. Peace is my natural nature. My mind is cool, calm, clean and clear like a lake. Positive and pure thoughts create ripples of joy in me. I enjoy peace. It's uplifting. These vibrations pure vibrations filled with love, and I feel a magnetic energy connecting me, pulling me to the Supreme Being. Supreme Soul. Supreme Power. I belong to the Supreme. Supreme energy belongs to me. I absorb this power in me. I am. A pure, peaceful blissful soul. Om Shanti. Om Shanti. Shanti.
Offering thanks to what she has said is very little. For all of us understand that now where the Divine is, what is the Source and how do we know Him? Our ability to understand the Divine has always been that simple, but yet we had forgotten this relationship. Thank you so much, Sudesh Didi, for enabling us a true identity of the divine, for enabling us of ways and means to connect to the divine, to the source, and for giving us an introduction to the Supreme. Do join us for the evening sessions, and I'm pretty sure that you will enjoy an evening full of insight and experience. See you in the evening.